تعام پہ گفتگو ہو رہی. پچھلے چند دنوں سے قلت تعام پہ گفتگو ہو رہی ہے, اور قلت تعام کی پہلی مجلس میں ہم نے یہ بتایا کہ زیادہ کھانے والے کو حدیث پاک میں اللہ کا دشمن کہا گیا. اسی طرح زیادہ کھانا اس کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا. کم کھانا سنت بھی ہے, کم کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حکم بھی ہے. اس طرح ایک مجلس میں ہم نے یہ بھی عرض کی کہ کم کھانے والا جو ہے اسے اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے, زیادہ کھانا والا ذکر سے بھی محروم ہو جاتا. اسی طرح ایک مجلس میں ہم نے یہ بھی عرض کی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کم کھانے والا جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے, زیادہ کھانے سے انسان گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. یہ بات تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان سست ہو جاتا ہے. کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات عرض کی کہ جو کم کھاتا ہے, جس نے بھوک کو فیل کیا ہے, وہ دوسروں کی بھوک کا بھی احساس کرتا ہے, اور دوسروں کی بھوک کا احساس کرنا یہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے. تو حدیث پاک میں چند لوگوں کو بہترین انسان کہا گیا ہے, اس میں سے ایک وہ شخص جو دوسروں کو کھانا کھلائے, اور دوسروں کو کھانا کھلانے کا احساس اسی کو زیادہ جس نے بھوک کو محسوس کیا ہو. آج کی اس مجلس میں قلت طعام سے متعلق ایک اور بات کرنی ضروری ہے کہ جہاں قلت طعام ضروری ہے, کم کھانا ضروری ہے, وہاں اس بات کا بھی احساس کرنا ضروری ہے کہ کھا جو رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں. کتنی ہی قلت طعام کیوں نہ کر لیں, جو انسان کے پیٹ میں جا رہا ہے اگر وہ حلال نہیں ہے تو پھر اس قلت طعام کا فائدہ بھی نہیں ہے. تو قلت طعام کا فائدہ جب ہے جب انسان کے پیٹ میں حلال جا رہا ہے, پیٹ میں حلال نہیں جا رہا تو چاہے آپ بالکل ہی نہ کھائیں, بالکل ہی تھوڑا سا کھائیں, پھر بھی جسم حرام ہی کی طرف جائے گا, جسم حرام کام ہی کرے گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے رسولوں کو حکم دیا, یا ایہا الرسل کلوا من طیبات, اے رسولوں کی جماعت تم حلال کھاؤ, واعملوا صالحا اور پھر نیک اعمال کرو. تو اگر قلت طعام کر بھی رہے ہیں, تھوڑا کھا رہے ہیں, مگر جو تھوڑا کھا رہے ہیں وہ حلال نہیں ہے, تو پھر یہ جو تھوڑا ہے پھر بھی جسم کو حرام ہی کی طرف راغب کرے گا. کئی مرتبہ انسان تھوڑے سے زیادہ کھا رہا ہوتا ہے, نارمل کھا رہا ہوتا ہے, مگر کھاتا حلال ہے. تو اس حلال کھانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ حرام کا تھوڑا کھانا انسان کو حرام کاموں کی طرف راغب کر دیتا ہے, اور حلال جو ہے وہ کئی مرتبہ زیادہ بھی کھا لیتا ہے تو بھی اس کی برکت سے بہت زیادہ حلال کی طرف چلے جاتے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, ان کی خانقاہ پہ جب مریدین آتے تھے تو آپ ان سے وعدہ لیتے تھے کہ جی کھانا جو کھاؤ گے, جو میں دوں گا وہی کھاؤ گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاؤ گے. अगर तुम्हारे पेट में हलाल के अलावा कुछ और चले गया तो फिर ये सारा इस्लाह की मेहनत जाया हो गई। हत्ता के हजरत फरमाते थे कि बेनमाजी के हाथ का खाना भी अगर हलाल भी है मगर पकाया बेनमाजी ने है तो उसमें भी बहुत ज्यादा कुदूरत है, बहुत ज्यादा बेबरकती है। तो बेनमाजी के हाथ का खाना नहीं खाते थे। आज का सफर था और समंदरी जहाज के जरिए सफर करके हज पे जाने का जमाना था। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, आज से यूं समझ ले 70-80 साल, 100 साल पहले की बातें हैं। तो हवाई जहाज अभी आया नहीं था, समंदरी जहाज पे हज होता था। हजरत हज पे तशरीफ ले गए और कमोबेश 1 महीने का सफर या 1 महीने से भी ऊपर का सफर। समंदरी जहाज में सबको पता चल गया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हज के सफर पे हैं। तो हज के सफर पे क्योंकि सारे हाजी थे, दीनी जज्बा भी था, तो हजरत का सुबह और शाम बयान होता था, दिन में 2 मरतबा और कभी दिन में 3 मरतबा बयान। खबर ये मिली कि जो बावर्ची साहब थे वो बेनमाजी थे, तो हजरत ने समंदरी जहाज पे जो खाना पक रहा था उसको खाने से इनकार। अपने साथ कुछ लाए थे, चने लाए थे, कुछ और इस तरह की चीजें लाए थे, बहुत ही मुख्तसर सा खाना था, थोड़ा खा लिया इतना कि 24 घंटे में जिंदा रह गए। तो लोगों ने हजरत को भी अर्ज की, बार बार समझाया, उस बावर्ची को भी बार बार समझाया, ना वो बावर्ची नमाज पे आ रहा था और ना हजरत अपने इस बात से पीछे हो। जब जद्दर के बंदरगाह पे पहुंचे तो वहां सऊदी अरब में हजरत के जो खास मुरीद थे हजरत को लेने के लिए आए हुए थे, उन्होंने जब हजरत को देखा कि ये हालत हुई हुई है, इतनी नकाहत और जिस्म बिल्कुल पतला हो गया, 1 महीना जो बंदे ने सही तरह से खाना ही नहीं खाया, तो मुरीद तो मोहब्बत का नाम है, वो देख के उसकी आंखों में आंसू कि ये हजरत की क्या हालत। तो हजरत को ले गए घर पे और फिर जब आराम करवाया तो हजरत ने बताया कि इस तरह भाई बेनमाजी था बावर्ची खाना बनाने वाला, तो इसलिए खाना नहीं खाया। तो मुरीद ने अपनी मोहब्बत में कहा कि हजरत हलाल तो था, सफर में भी था, आपको यूं नहीं करना चाहिए, तो खाना खा ले। फरमाया कि इस मुबारक देश में बरकतें हासिल करने के लिए आए हैं, इस मुबारक देश में कुछ लेने के लिए आए हैं, जो कुछ हासिल किया है उसको गंवाने के लिए नहीं आए हैं। तो किल्लते ताम जितना भी चाहे कर ले, जब तक पेट में वो नहीं जाएगा जो हलाल है, तब तक इस किल्लते ताम का फायदा नहीं। और अगर हलाल चले गया पेट तो चाहे थोड़ा ज्यादा ही क्यों ना चले गया, उसका अपना एक फायदा है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए कि बड़े बुजुर्ग हैं, तो बड़ी मोहब्बत से उनके घर पे आए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को भी एहसास हुआ कि ये वक्त का इमाम है इमाम अहमद इब्ने हम्बल, तो उन्होंने अपने घर में जगह भी दी। तो रात को आराम किया और रात को उनके लिए खाने का इंतजाम किया। अब वो अकेले ही थे हजरत के घर में, हजरत की जैसे मेहमान जो खाना था उसमें ठहरे हुए थे। घर वालों ने खाना बनाया जैसे 2-3-4 लोगों का खाना होता है और वो उनके कमरे में रख दिया। रात गुजार के इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात भी हो गई। सुबह जब फजर की नमाज के लिए हजरत मस्जिद में गए तो फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के बाद हजरत वहीं ठहर गए, इमाम अहमद इब्ने हम्बल इमाम शाफी अपने घर वापस आ गए। तो घर में उनकी बेटियां बताती हैं कि जी आप तो कह रहे थे बड़े बुजुर्ग हैं, तो हमने उनके लिए खाना रखा इतना सारा और पानी वुजू के लिए रखा, खाना सारा खत्म हो गया और वुजू का पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये कैसे बुजुर्ग है कि खाना चार बंदों का खा गए। और इतना भी नहीं हुआ कि रात में वुजू करते को तहज्जुद पढ़ते को हमें भी पता चलता कि बुजुर्ग आए हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दिन में जब मुलाकात हुई तो सच्चाई का दौर था, हजरत ने पूछ ही लिया कि हजरत घर में तो ये बता रहे हैं कि खाना भी खाया और वुजू का पानी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। हजरत खाना तो मैं थोड़ा खाता हूं मगर आपके घर का खाना था, तो यही जहन में आया कि इतनी बरकत वाला खाना बार बार नहीं मिलेगा, तो अपने ऊपर जबर करके ज्यादा खा लिया, ये खाना मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाए। वुजू का पानी इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि वुजू की जरूरत ही नहीं आए, पूरी रात ही इबादत में गुजरी तो इस वजह से वजू की जरूरत ही पेश नहीं आई, इसलिए पानी इस्तेमाल। तो किल्लत ताम इंसान जितना भी कर ले, हलाल खाएगा बरकत वाला खाएगा तो थोड़ा ज्यादा भी खा ले तो भी वो बुराई नहीं है, और थोड़ा खा रहा है मगर हलाल नहीं है तो जिस्म को उसने फिर भी बुरा कर। इसीलिए हजर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से उनके किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत कितना खाना चाहिए, उन्होंने फरमाया कि तू अच्छा खा मगर फिर काम भी अच्छी तरह से कर, इबादत अच्छी तरह से कर। वो वाला अच्छा खा, अच्छा खाने से मुराद ये कि ठीक है थोड़ा ज्यादा खा ले मगर ऐसा हलाल खा, ऐसा अच्छा खा कि फिर तू इबादत सही तरह से करके दिखा। तो बुजुर्गों के नजदीक किल्लते ताम जरूरी है, ये इस्लाह का नुस्खा है, मगर किल्लते ताम से पहले एक और चीज जरूरी है कि वो ताम हलाल और पाकीजा होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हलाल तैयब पाकीजा बरकतों वाला और इज्जतों वाला रिस्क नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुआ करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم إنا نسألك علما نافعا
آمين.
وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.